लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। देवदूत प्रार्थना के पूर्व अपने संदेश में पोप फ्रांसिस ने मंदिर में प्रभु के समर्पण पर चिंतन करते हुए कहा कि यह हमें याद दिलाता है कि यीशु सारी मानव जाति के लिए मुक्तिदाता एवं प्रकाश हैं, तथा निमंत्रण देते हैं कि हम सचमुच ईश्वर से मुलाकात करने की कोशिश करें। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 2 फरवरी को मंदिर में प्रभु के समर्पण महापर्व के अवसर पर, जब धर्म संघियों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
Oggi il Vangelo della liturgia ci parla di Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio di Gerusalemme.
आज की धर्म विधि का सुसमाचार पाठ हमें मरियम और योसेफ के बारे बतलाता है, जो बालक यीशु को यरूशलेम मंदिर ले गए। संहिता के अनुसार उन्होंने उसे ईश्वर के मंदिर में चढ़ाया, यह याद करते हुए कि जीवन प्रभु से आता है। और जब पौत्र परिवार वही कार्य कर रहा था जो इसराइली लोगों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया था, तब कुछ ऐसी घटना घटी जो पहले कभी नहीं हुई थी। दो बुजुर्ग सिमेओन और अन्ना यीशु के बारे भविष्यवाणी करते हैं, वे ईश्वर की स्तुति करते और बालक के बारे में उन सभी लोगों को बतलाते हैं जो यरूशलेम के छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी हृदय स्पर्शी आवाज मंदिर के प्राचीन पत्थरों से टकराकर इसराइल की प्रतीक्षा की पूर्णता की घोषणा करती है। सचमुच ईश्वर लोगों के बीच उपस्थित है, इसलिए नहीं कि वे चार दीवारों के भीतर रहते, बल्कि इसलिए कि वे मनुष्यों के बीच मनुष्य के रूप में निवास करते हैं। सिमेओन और अन्ना के बुढ़ापे में वह नवीनता घटित होती है जो दुनिया के इतिहास को बदल देती है। मरियम और योसेफ यीशु के लिए कहे गए शब्दों से विस्मित हो जाते हैं। वास्तव में जब सिमेओन बच्चे को अपने बाहों में लेता है तो वह उन्हें 3 सुंदर नामों से पुकारता है। यीशु मुक्तिदाता हैं, यीशु प्रकाश हैं, यीशु विरोधाभास के संकेत हैं। सिमेओन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिससे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। संत पापा ने कहा, यह बात हमें हमेशा आश्चर्यचकित करती है कि दुनिया की मुक्ति सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित है, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। यीशु गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति और इसराइल के गौरव हैं। दुनिया भर के लिए एक सूरज की तरह यह बालक इसे बुराई, दर्द और मौत के अंधेरे से मुक्ति दिलाएगा। संत पापा ने कहा कि आज भी हमें इस रोशनी की अति आवश्यकता है। अंततः सिमेओन द्वारा आलिंगन किया गया बच्चा विरोधाभास का संकेत है, ताकि हृदयों के विचार प्रकट हो सकें। यीशु ने पूरे इतिहास और उसके नाटक एवं हम में से हर एक के जीवन को परखने के लिए मानदंड प्रकट किया है। यह मानदंड प्रेम है। जो प्रेम करते हैं वे जीवित रहते हैं, जो घृणा करते वे मर जाते हैं। अर्थात यीशु मुक्तिदाता हैं, यीशु प्रकाश हैं और यीशु विरोधाभास के चिन्ह हैं। संत पापा ने सभी विश्वासों को चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा, यीशु के साथ मुलाकात से प्रबुद्ध होकर हम खुद से पूछें,
Che cosa attendo nella mia vita? Qual è la mia grande speranza?
मैं अपने जीवन में क्या उम्मीद करता हूँ? मेरी महान आशा क्या है? क्या मेरा दिल प्रभु का चेहरा देखना चाहता है? क्या मैं मानवता के उद्धार की उनकी योजना के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ? इसके बाद संत पापा ने कुंवारी मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
Preghiamo insieme Maria, Madre Purissima, perché ci accompagni nelle luci e nelle ombre della storia.
आइए हम अति निष्कलंक माता मरियम से एक साथ प्रार्थना करें कि वे हमें इतिहास के प्रकाशों और अंधकारों के माध्यम से हमें प्रभु से मुलाकात करने में हमारा साथ दें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Angelus Dominus, Ave Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्व भर में शांति के लिए अपनी अपील दोहराई तथा जीवन दिवस को प्रोत्साहन दिया। रविवार को इटली में जीवन दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु थी जीवन का संचार, विश्व के लिए आशा। संत पापा ने परिवारों में बच्चों के स्वागत को प्रोत्साहन देते हुए कहा, मैं इतालवी धर्मदक्षों के साथ मिलकर उन परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो जीवन के उपहार का उत्सुकता से स्वागत करते हैं, और युवा दंपतियों को प्रोत्साहित करता हूँ कि वे बच्चों को दुनिया में लाने से ना डरें। तब उन्होंने 50 वर्षों पुराने इतालवी जीवन आंदोलन के सदस्यों का अभिवादन किया। आज वैटिकन में बच्चों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसका शीर्षक है, उन्हें प्यार करो और उनकी रक्षा करो। संत पापा ने सम्मेलन के प्रति उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, मुझे इसका प्रचार करने का सौभाग्य मिला है और मैं इसमें भाग लूंगा। यह छोटे बच्चों के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवालों को दुनिया के ध्यान के केंद्र में लाने का एक अनूठा अवसर है। मैं आपको इसकी सफलता के लिए प्रार्थना में शामिल होने हेतु आमंत्रित करता हूँ। और मानव जीवन के प्राथमिक मूल्य के संबंध में संत पापा ने कहा, मैं युद्ध को नहीं कहता हूँ जो नष्ट करता है। युद्ध सब कुछ नष्ट कर देता है या जीवन को नष्ट करता है और इससे अनदेखा करने के लिए दबाव डालता है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध हमेशा हार का कारण बनता है। तत्पश्चात संत पापा ने सरकारों, खासकर ख्रिस्त सरकारों से अपील करते हुए कहा, इस जयंती वर्ष में मैं अपनी अपील दोहराता हूँ, विशेषकर ख्रिस्त सरकारों से, कि चल रहे सभी संघर्षों को समाप्त करने के लिए बातचीत हेतु पूरा प्रयास करें। उसके बाद विश्वासियों को शांति हेतु प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, आइए हम पीड़ित यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल, लेबनान, म्यांमार, सूडान और उत्तरी कीवू में शांति के लिए प्रार्थना करें। तब संत पापा ने विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया। उन्होंने कई अन्य देशों के साथ भारत के विश्वासियों का विशेष रूप से अभिवादन किया और अंत में अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित
की। Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वाटिकन संग्रहालय ने बच्चों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर वाटिकन में आयोजित बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन शाम की मेजबानी की। रविवार 2 फरवरी को बच्चों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्हें प्यार करें और उनकी रक्षा करें शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत सोमवार 3 फरवरी को वाटिकन में संत पापा फ्रांसिस की भागीदारी के साथ शुरू हुई। इस शिखर सम्मेलन में नोबेल पुरस्कार विजेता शिक्षाविद, लेखक, अर्थशास्त्री, धार्मिक और राजनीतिक हस्तियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नेता उपस्थित हुए हैं। यह पहल संत पापा फ्रांसिस द्वारा 20 नवंबर 2024 को शिखर सम्मेलन की घोषणा के साथ शुरू की गई थी। कार्डिनल पारोलिन ने शिखर सम्मेलन को चिंतन और एक दूसरे को सुनने का क्षण बताया। 2 सत्रों में विभाजित इस कार्यक्रम में संत पापा फ्रांसिस द्वारा एक उद्घाटन भाषण और समापन टिप्पणियां शामिल हैं, साथ ही 50 वक्ताओं की भागीदारी वाली 7 पैनल चर्चाएं भी शामिल हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 3 फरवरी को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में बच्चों के अधिकारों पर विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिष्ठित प्रतिभागियों का अभिवादन किया। संत पापा ने निमंत्रण स्वीकार कर यहां आने के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि अपने अनुभव और विशेषज्ञता को एकत्रित करके आप इन बच्चों की सहायता और सुरक्षा के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं, जिनके अधिकारों का प्रतिदिन हनन किया जाता है और उन्हें अनदेखा किया जाता है। संत पापा ने कहा कि आज भी अक्सर लाखों बच्चों के जीवन में गरीबी, युद्ध, स्कूली शिक्षा की कमी, अन्याय और शोषण की झलक मिलती है। गरीब देशों में बच्चे और किशोर या दुखद संघर्षों से अलग थलग पड़े लोग भयानक परीक्षणों को झेलने के लिए मजबूर है। अधिक संसाधन संपन्न दुनिया भी अन्याय से अछूती नहीं है। जहां लोग युद्ध या भूख से पीड़ित नहीं हैं, वहां समस्या ग्रस्त परिधियां हैं। जहां छोटे बच्चे अक्सर कमजोर होते हैं और ऐसी समस्याओं से पीड़ित होते हैं जिन्हें हम कम करके नहीं आंक सकते। वास्तव में अतीत की तुलना में बहुत अधिक हद तक स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से अधिक कई कठिनाइयों से गुजर रहे बच्चों, चिंतित या उदास युवाओं और आक्रामकता या आत्मक्षति के रूपों की ओर आकर्षित किशोरों से निपटना पड़ता है। इसके अलावा दक्षता की संस्कृति बचपन को बुढ़ापे की तरह अस्तित्व की परिधि के रूप में देखती है। संत पापा ने कहा कि कई बच्चे समुद्र में, रेगिस्तान में या हताश आशा से की गई यात्राओं के कई मार्गों पर प्रवासी के रूप में मर जाते हैं। अनगिनत अन्य चिकित्सा देखभाल की कमी या विभिन्न प्रकार के शोषण के कारण दम तोड़ देते हैं। ये सभी परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन वे एक ही सवाल उठाती हैं। यह कैसे संभव है कि एक बच्चे का जीवन इस तरह खत्म हो जाए। संत पापा ने कहा कि आज 40 मिलियन से अधिक बच्चे संघर्ष के कारण विस्थापित हो चुके हैं और लगभग 100 मिलियन बेघर हैं। बाल दास्ता की त्रासदी भी है। लगभग 160 मिलियन बच्चे जबरन श्रम, तस्करी, दुर्व्यवहार और सभी प्रकार के शोषण के शिकार हैं। इसमें जबरदस्ती विवाह भी शामिल है। उन बच्चों की बात सुनना जो आज हिंसा, शोषण और अन्याय में जी रहे हैं, युद्ध के लिए हमारी नहीं को मजबूत करता है। बर्बादी और लाभ की फेंक देने वाली संस्कृति को, जिसमें सब कुछ बिना सम्मान या जीवन की परवाह किए बिना खरीदा और बेचा जाता है, इस फेकू मानसिकता के नाम पर, जिसमें मनुष्य सर्वशक्तिमान बन जाता है, गर्भपात जैसी जानलेवा प्रथा के माध्यम से अजन्मे जीवन की बलि दी जाती है, गर्भपात बच्चों के जीवन को समाप्त करता है और पूरे समाज के लिए आशा के स्रोत को काट देता है। अपना संबोधन समाप्त करते हुए संत पापा ने उन्हें इस बैठक द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और सोमवार को वाटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम सभागार में संत पापा फ्रांसिस ने स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आयरलैंड से जयंती वर्ष के लिए रोम आए करीब 1200 तीर्थ यात्रियों के एक समूह को संबोधित करते हुए क्रिस्तीय जीवन के तीन स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि उनकी जयंती तीर्थ यात्रा विश्वास, आशा और प्रेम में बढ़ने का एक अवसर है। उन्होंने यूरोप और उसके बाहर चल रहे युद्धों के बीच सामंजस्य और शांति की एकजुट गवाही की आवश्यकता पर भी विचार किया। जयंती की थीम आशा के तीर्थयात्री का उल्लेख करते हुए संत पापा ने उपस्थित लोगों से रोम की अपनी यात्रा का उपयोग अपने विश्वास को गहरा करने का आग्रह किया, विशेष रूप से संत पेत्रुस और पौलुस के कब्र में जाकर। संत पापा ने तीर्थयात्रियों को अपने धर्म प्रचार के मिशन को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, इस बात पर जोर देते हुए कि उनकी यात्रा घर लौटने पर समाप्त नहीं होती है, बल्कि उनके दैनिक जीवन में जारी रहती है। सबसे बढ़कर उन्होंने कैथोलिक समुदायों से, खासकर संघर्ष और विभाजन से चिन्हित दुनिया में अन्य क्रिस्तीय संप्रदायों के साथ मिलकर मेल मिलाप, उपचार और शांति की गवाही देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, इस कठिन समय में जब युद्ध यूरोप और उससे आगे तक फैल रहा है, हमारे मानव परिवार को मेल मिलाप और शांति के लिए एकजुट गवाही की आवश्यकता है, जिसे केवल ईश्वर ही ला सकते हैं। तीर्थयात्रियों के बीच युवाओं को संबोधित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने 27 अप्रैल को धन्य कार्लो अकुतिस के आगामी संत घोषणा समारोह का उल्लेख किया। उन्होंने धन्य अकुतिस को हमारे समय के लिए संत के रूप में वर्णित किया, यह दिखाते हुए कि यीशु का अनुसरण करना, उनका संदेश साझा करना और पवित्रता में सच्चा आनंद और स्वतंत्रता पाना संभव है। उधर संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो के गोमा में लड़ाई में कम से कम 700 लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारी के अनुसार 2800 लोग घायल हुए हैं। रवांडा द्वारा समर्थित M23 विद्रोहियों ने उत्तरी किवू प्रांत की राजधानी पर कब्जा कर लिया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।